Hare Padre, Figlio e Spirito Santo, Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pad Paramahansa Paripraja Acharya Ashtotara Shatshya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Upasthit Bhaktavrinda Ki Jai. Upasthit Bhaktavrinda Ki Jai. Upasthit Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Ajnanti Nirandhasya Gyananjana Shalakara Chakshurunnilam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Vishnam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hari Priya Vansha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vesha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshakari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. कई हफ्तों से हम लोग महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं. अभी तक महाभारत प्रारंभ नहीं हुआ है. महाभारत प्रमुखता उन 18 दिनों के लिए कहा जाता है जब ये युद्ध हुआ. वैसे इस ग्रंथ का नाम भारत है, इसको भारत कहते हैं. पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी. और एक भी नाम है ना इसका, क्या कहते हैं, जय, जय भी कहते हैं. और कथा बताई थी कि कैसे ये भारत को सार कहा जाता है शास्त्रों का, क्योंकि इसी में भगवान ने भगवद गीता जो सारे शास्त्रों का सार है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. तो सारे उपनिषदों के सार को निचोड़ कर भगवद गीता में भगवान ने इस महाभारत में प्रस्तुत किया है. और क्योंकि एक समय जब देवताओं के बीच में ये बात हुई थी कि महाभारत क्या क्या महत्व है, तो फिर उस समय तौला गया था, भजन किया गया था. भगवान का गुणगान जितना महाभारत में हुआ उतना ये वेदों में स्पष्ट रूप से नहीं हुआ. तो इसीलिए महाभारत को बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है. विशेष करके वैष्णवों के लिए भगवान ने इसमें जिस ज्ञान को प्रदान किया है भगवद गीता के रूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है. एक दृष्टि से देखें तो ये बड़ा ही मूल ज्ञान है जो हम सबको होना चाहिए, जो कि आधार है भक्ति का. लेकिन अगर परमहंसों के लिए देखें तो फिर ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है. अर्थात दोनों दृष्टि से, नए लोगों के लिए भगवद गीता ऐसा ज्ञान प्रदान करती है जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ सकें। और परमहंसों के लिए भगवद गीता वही श्लोक उस रस को प्रदान करते हैं जिसका आस्वादन करके आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम, हर पद पे हर क्षण उनका आनंद बढ़ता है। तो यही भगवद गीता है, लेकिन उसके आस्वादन अलग अलग हो जाते हैं हमारे भक्ति में स्तर के अनुसार हम उसका आस्वादन करते हैं। एक नौसिखिय भक्त इसको केवल एक ज्ञान के रूप में देखता है कि भगवद गीता में कितना ज्ञान है, भगवान की शक्तियों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है इत्यादि। लेकिन वही एक परमहंस या भक्ति में जो आगे बढ़े हुए हैं वे लोग इसे रस के रूप में देखते हैं, उनको इसमें रस आता है। भगवान ने वर्णन किया है अपने ऐश्वर्यों का, तो उसको सुनकर आनंद लेते हैं। तो ये चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की थी, और फिर चर्चा ऐसे हुई थी कि किस प्रकार दुर्योधन इत्यादि चर्चा करने लगे कि कैसे पांडवों को खत्म करना चाहिए। अब पता तो चल गया था कि पांडव जीवित हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन फिर सबकी सहमति से ऐसा हुआ कि उनको वापस बुलाना चाहिए। विदुर को भेजा गया और फिर विदुर उनको लेकर आए और उन्हें आधा राज्य प्रदान किया गया। वैसे तो उन्हें पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन युधिष्ठिर ने कोई विरोध नहीं किया और फिर उन्हें आधा राज्य मिला, और फिर अपने राज्य की कुछ सीमाएं बढ़ाने लगे। नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने उन्हें बहुत सुंदर कथा सुनाई दो भाइयों की, जिनकी मृत्यु एक स्त्री के कारण हुई है ना। इस कथा सुनी थी हमने, क्या नाम था उन दो भाइयों का? सुंद और उपसुंद। आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ये कथा नारद मुनि ने सुनाई, और ये कथा सुनाकर उन्होंने कहा कि जैसे एक स्त्री के कारण उन दो भाइयों में, और कैसे भाई थे वो, कुछ साधारण नहीं, बड़ा प्रेम था उनमें, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक दूसरे के बिना खाते नहीं थे, एक ही पलंग पर सोते थे, इतना प्रेम था, लेकिन केवल एक स्त्री के कारण। यहां स्त्री अर्थात आसक्ति, स्त्री के कारण हुआ, लेकिन स्त्री के कारण नहीं हुआ, उनकी आसक्ति के कारण हुआ। दोनों को उस स्त्री में इतनी आसक्ति हो गई कि अपनी आसक्ति को वश में नहीं कर पाए। हाँ, वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं थी। क्या नाम था उसका? हाँ, तिलोत्तमा। ऐसा क्यों नाम दिया गया था उसे? तिलोत्तमा इसीलिए कहा गया था, तिल तिल उत्तम था, इसीलिए तिलोत्तमा ब्रह्मा जी ने नाम दिया था उसे। थोड़ी थोड़ी मेमोरी वीक हो रही है। तो नारद मुनि ने जब ये कथा सुनाई, और उसके बाद नारद मुनि ने कहा पांचों भाइयों से कि आप लोग पांचों ने एक ही स्त्री से विवाह किया है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कभी आपके बीच में वैर उत्पन्न नहीं हो। ये कथा उन्होंने केवल इसलिए सुनाई थी ताकि इस कथा के द्वारा पांडव ये जान लें कि जैसे तिलोत्तमा के कारण दो इतने प्रेम से रहने वाले भाई आपस में लड़कर मर गए, और वो भी बड़े शक्तिशाली। नारद मुनि समझा रहे थे कि आप पांच पांडव भी बड़े शक्तिशाली हो, आपको आपके अलावा और कोई मार नहीं सकता। सुंद और उपसुंद, इनको क्या वरदान मिला था? कोई उनको मार नहीं सकता, केवल एक दूसरे को आपस में ही वो मार सकते हैं। तो नारद मुनि एक दृष्टि से समझा रहे थे कि आप पांच भी बड़े शक्तिशाली हो, आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन आप आपस में अगर लड़े तो आप आपस में एक दूसरे को मार सकते हो, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आपके बीच में कभी वैर उत्पन्न ना हो। तो फिर उन्होंने आपस में चर्चा की और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ में होगा जहां पर जिस स्थान में, वहां पर दूसरे अन्य भाई नहीं जाएंगे, और अगर वे गए तो उन्हें 12 वर्ष के लिए अपने देश को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा या कहीं भी वनवासी होना पड़ेगा या बाहर जाना, बाहर रहना पड़ेगा 12 वर्ष तक। तो फिर ये बड़ी कठोर व्यवस्था है ना, ये इसलिए की थी कम से कम घबरा कर कोई इसका पालन करके रहे, घबरा जाए 12 वर्ष तक अलग रहना। दरअसल 12 वर्ष तक बाहर रहना उनके लिए तपस्या नहीं थी, लेकिन 12 वर्ष तक अपने भाइयों से अलग रहना, अपनी माता से अलग रहना, ये उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या थी। तो फिर ऐसी व्यवस्था की और सब बड़े अच्छी तरह चलने लगा। युधिष्ठिर महाराज का राज्य बहुत ही सुचारू रूप से युधिष्ठिर महाराज चला रहे थे। ऐसे में एक समय एक ब्राह्मण भागता हुआ महल में आया और बड़े जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि देखो चोर मेरी गायों को ले जा रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। और कहने लगे कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो धर्म की रक्षा करें, मेरा धर्म है गायों को संभालना, मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो राजा का कर्तव्य है कि वो उसकी मेरी रक्षा करें, क्योंकि राजा जब कर लेते हैं तो ये उनका दायित्व हो जाता है कि वो प्रजा की रक्षा करें। वैसे यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि राजा को केवल राज्य करना अर्थात मौज मजा करना नहीं है, धन व्यय करना नहीं है, ऐश्वर्यों में या विलासों में पड़ना नहीं है, राजा का कर्तव्य है कि अगर वो प्रजा से कर लेता है तो फिर उस कर के बदले में प्रजा को रक्षण प्रदान करे। अब देखिए कितना बड़ा
भी राजा को ये वो बतला रहे थे कि एक राजा का कर्तव्य है
कि वो गायों की रक्षा करे। श्रील प्रभुपाद ने अपने कई तात्पर्यों में गाय की रक्षा, गो रक्षा को बहुत महत्व दिया है। परीक्षित महाराज के विषय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्यों में, जब परीक्षित महाराज हम सब जानते हैं कि जंगल में गए और एक मृत सर्प को उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया, और जब वे वापस आ रहे थे अभी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें श्राप मिल चुका है। तो वे वापस आ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने गलती की, मैंने धर्म का पालन नहीं किया। और फिर वो सोचने लगे कि ऐसे राजा के लिए जो धर्म का पालन नहीं करता, जो ब्राह्मण सभ्यता या ब्राह्मण के जो नियम है, गुण है, उनको बनाए नहीं रखता या उनकी रक्षा नहीं करता, जो कृष्ण भावनामृत या भगवान की भावना या भगवान की चेतना का प्रसार नहीं करता और जो गायों का रक्षण नहीं करता, ऐसे राजा के लिए राज्य करना असंभव है, उसे नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज ये कहते हैं। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो पहले स्कंद में ये वर्णन आता है और उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे परीक्षित महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ब्राह्मणों की जो सभ्यता है उसको नहीं संभाला, या ब्राह्मणों का जो कल्चर है उसको नहीं संभाला, मैंने भगवत चेतना को नहीं संभाला और मैंने गायों को नहीं संभाला। अगर इन तीनों की रक्षा मैंने नहीं किया तो ये अच्छा है कि मेरा राज्य, मेरा धन, मेरी संपत्ति जलकर खाक हो जाए। ऐसे राज्य का, ऐसे संपत्ति का कोई लाभ नहीं। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि मानव सभ्यता या मानव समाज ये तीन चीजों पर आधारित है, जिसकी शुरुआत होती है गोरक्षा से। वो कहते हैं कि जब गोरक्षा होती है तब फिर ब्राह्मणों को धर्म पालन में सहयोग मिलता है, जिसके कारण ब्राह्मणिकल कल्चर या ब्राह्मण सभ्यता का रक्षण होता है। और जब ब्राह्मण सभ्यता का रक्षण होता है तो उसके द्वारा भगवत चेतना फैलती है। तो ऐसा समाज जहां पर गायों की रक्षा नहीं होती, गो रक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, वहां ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते। और क्योंकि ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर पाते, हाँ, यहां पर ब्राह्मण अर्थात नाम के ब्राह्मण नहीं, केवल धागा पहनने वाले ब्राह्मण नहीं, यहां ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण, सही रूप में ब्राह्मण या भक्त जो भगवत चेतना का प्रसार करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये तीनों चीजें आश्रित हैं। जब गोरक्षा होती है तो ब्राह्मणों की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की सभ्यता या ब्राह्मणों के गुणों की रक्षा होती है तो फिर भगवत चेतना का प्रसार होता है, और भगवत चेतना के प्रसार से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर तक उठ पाता है और जिससे मनुष्य जीवन की सफलता होती है। तो ये शुरुआत है गो रक्षा, गायों की रक्षा करना। और भी अन्य कई स्थानों पर श्री प्रभुपाद ने इस गो रक्षा को बड़ा महत्व दिया है कि गायों की रक्षा करनी चाहिए। वैसे भी बड़ा मासूम प्राणी है गाय, और उसकी रक्षा प्रभुपाद कहते हैं अन्य सभी प्राणियों से ज्यादा गायों की रक्षा होनी चाहिए। शास्त्रों में, विशेष करके मनुसंहिता में ये आदेश दिया गया है कि 5 लोगों का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए, बच्चों का, स्त्रियों का, ब्राह्मणों का, वृद्धों का और गायों का, क्योंकि ये 5 चीजें हमारी सभ्यता को संभालते हैं। इसलिए इन 5 का कभी भी किसी भी अवस्था में वध नहीं करना चाहिए। जैसे जब भगवान श्री राम सबसे पहले असुर का वध कर रहे थे तो वो एक स्त्री थी, भगवान ने सोचा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है स्त्री का वध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर विश्वामित्र मुनि ने समझाया कि चिंता मत करो, इसने स्त्री के लक्षणों को खो दिया है, ये तो राक्षसी हो गई है, इसका वध करने में कोई हानि नहीं है। श्री कृष्ण ने भी जब पहले असुर का वध किया तो वो भी स्त्री थी, है ना, पूतना। तो देखिए सारे शास्त्रों को तोड़ दिया। शास्त्र में लिखा है किसी भी स्थिति में बध नहीं होना चाहिए। श्री राम ने भी पहला वध स्त्री का किया, कृष्ण ने भी पहला वध स्त्री का किया, लेकिन दोनों उस समय में आसुरी प्रवृत्ति की थी, राक्षसी थी। और वैसे भी देखा जाए तो शास्त्रों के नियम भगवान पर लागू नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने शास्त्रों के नियमों को तोड़ा, क्योंकि भगवान शास्त्रों के नियमों से परे हैं। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति जेल में सजा भोगता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे वो जेल के बाहर नहीं जा सकता, उसको जो दिया जाए वही खाना चाहिए, जो कपड़े दिए जाए वही पहनने चाहिए। लेकिन जो जेलर होता है उसके लिए नियम नहीं है, वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, जैसे चाहे कपड़े पहन सकता है, जो चाहे खा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि जेलर भी तो जेल में है उसके लिए भी यही नियम नहीं। तो इसी तरह भगवान ने नियम बनाए हैं हम बद्ध जीवों के लिए। तो इसलिए कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान क्यों। हाँ, एक दृष्टि है कि भगवान कभी शास्त्रों को गलत सिद्ध नहीं करते, वो जो शास्त्र में लिखा है शास्त्रोचित कार्य ही करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में वो स्वयं कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देव करो जनः। क्योंकि अगर वही शास्त्रों को नियमों को भंग करेंगे तो फिर सारे लोग भी उनका ही पालन करेंगे, लेकिन फिर भी है वो शास्त्रों के परे, त्रिगुणातीत, इन गुणों में नहीं आते, शास्त्रों के अधीन नहीं है। तो इसलिए ये शास्त्रों का नियम है कि 5 लोगों का रक्षण अवश्य होना चाहिए, जिनमें गाय इसका रक्षण भी आवश्यक है। गाय को 7 माताओं में से एक माता भी माना गया है। व्यक्ति के लिए कई माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माता, एक दाई जो उसको सहयोग करते हैं जन्म देने में, उसको भी माता कहते हैं। राजा की पत्नी उसको माता के समान माना गया है, ब्राह्मण पत्नी को माता माना जाता है, गुरु पत्नी को माता माना गया है, पृथ्वी देवी को माता माना गया है और गाय को माता माना गया है। तो ये 7 प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है कि इन 7 को माता का स्थान देना चाहिए, और गाय भी एक माँ का स्थान है उसे प्राप्त। तो फिर कैसे हम ऐसे गाय का वध कर सकते हैं। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो आज समाज में कई लोग बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं गो रक्षा के, गायों का रक्षण होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कृष्ण जब यहाँ पर लीला करते थे तो हर रोज सुबह गायों को चराने लेके जाते थे, गायों की सेवा करते थे, गायों की मालिश करते थे, गायों का दूध निकालते थे, ये उनके कार्य थे। हम इनको बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन आप में से किसी से कहा जाए कि हमारे गोकुल धाम में गायों की रक्षा के लिए, गायों की सेवा के लिए सेवकों की आवश्यकता है, कृपया आप सब आइए, तो एक भी भक्त नहीं आएंगे। वही कार्य जो कृष्ण करते थे वही कार्य आपसे करने के लिए कहा जाए तो हमें कितना आतुर होना चाहिए, हमें भागना चाहिए, ये कृष्ण का कार्य है। लेकिन हम लोग केवल एक बार हमारे पास कुछ भक्त आए थे, कुछ भक्त नहीं बाहर के लोग आए थे, हम लोग वो रक्षा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत उसके सीवी निकाल रहे हैं, उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं। हमने कहा आपके पास गौशाला है, अभी गौशाला तो नहीं है। हमने कहा आपके पास गौशाला नहीं है, गायों की आपने पहले सेवा नहीं की है, फिर क्यों इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, पहले आप सेवा कीजिए तब महत्व को समझेंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रिस्कॉन के द्वारा गो रक्षा को सही दृष्टि से बतलाया जा रहा है कि सही दृष्टि में गो रक्षा क्या है, विशेष करके गोकुल धाम, जहाँ पर हम लोग गो रक्षा को सही दृष्टि से पालन कर रहे हैं। उनकी रक्षा इसलिए नहीं हो रही कि उससे दूध मिलता है, उनकी रक्षा इसलिए नहीं हो रही कि आगे चलकर उनको कत्ल खाने में भेजने से कुछ धन प्राप्त होगा, उनकी रक्षा केवल इसलिए हो रही है क्योंकि कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो गायों के हित करने वाले हैं कृष्ण। तो इसीलिए जब अर्जुन से कहा गया तो अर्जुन ने सोचा कि मुझे गायों की रक्षा करनी चाहिए, मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति आए कोई बात नहीं। हम कई बार ये बतला चुके हैं कि श्री प्रभुपाद ने गो रक्षा को इतना महत्व दिया कि एक समय जब न्यू वृंदावन में कुछ डाकुओं ने आक्रमण किया था वहां पर, जिसमें कुछ गायों को क्षति पहुंची और मर गई कुछ गायें, तो जब श्री प्रभुपाद उस समय शायद वृंदावन में थे और उनको ये समाचार मिला, तो जब उन्हें ये समाचार मिला कि श्री प्रभुपाद डाकू आए और इतनी गाय मारी गई, श्री प्रभुपाद ने पहला प्रश्न पूछा कितने ब्राह्मण मरे, कितने भक्त मरे? उन्होंने कहा एक भी नहीं। श्री प्रभुपाद ने कहा कि डीटीज को, विग्रह को और गायों को अपने प्राण देकर भी बचाना चाहिए भक्तों को। तो ये गो सेवा का महत्व, गो रक्षा का महत्व श्री प्रभुपाद ने समझाया। तो अर्जुन ने भी यही सोचा कि भले ही मुझे कष्ट क्यों ना हो लेकिन मुझे गायों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए वो उस कमरे में चले गए और अपने धनुष बाण को लिया और फिर वो भागे उन चोरों के पीछे और बहुत जल्दी उन चोरों को हरा कर मार कर गायों को वापस ले आए और ब्राह्मण को दे दिया। फिर वापस आकर वे युधिष्ठिर महाराज के पास गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जैसे कि हमने आपस में व्यवस्था की थी तो मैंने उस नियम को तोड़ा है, इसलिए मुझे 12 वर्ष के लिए जाना होगा। युधिष्ठिर महाराज उसको सहन नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो अगर तुमने कोई गलती की भी है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, गलती को क्षमा किया जा सकता है। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार अगर बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई को कमरे में आने में कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर छोटा भाई बैठा हो स्त्री के साथ तो अगर बड़ा भाई जाए तो ये गलत है, ये शास्त्रों का नियम है, युधिष्ठिर महाराज ने समझाया। तो इसलिए तुमने कोई गलती नहीं की, और की भी है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो इसलिए भूल जाओ इस बात को। अर्जुन ने कहा कि नहीं, धर्म का पालन मैंने आपसे ही सीखा है। आप ही सदैव कहते हैं कि व्यक्ति को धर्म के पालन में कभी भी अड़िग रहना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए धर्म का पालन करने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे अर्जुन के लिए आई। देखिए उन्होंने जिसके प्रति अपराध किया युधिष्ठिर महाराज, वही कह रहे हैं, धर्मराज स्वयं कह रहे हैं तो बात नहीं मत जाओ, लेकिन धर्म का पालन करना चाहिए। उसमें हमें अपने केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। आज के समाज में धर्म एक फैशन बन गया है, लोग धर्म को अपनाते हैं, धर्म को स्वीकार करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सकता है उतना पालन करते हैं और फिर उसके बाद त्याग देते हैं। लेकिन धर्म का हर स्थिति में, हर अवस्था में पालन होना चाहिए। तो फिर जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो युधिष्ठिर कुछ कह नहीं पाए और फिर अर्जुन वहां से 12 वर्ष के लिए चले गए। हाँ, अर्जुन के साथ बहुत सारे ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले इत्यादि रहे, क्योंकि अर्जुन ये नहीं चाहते थे कि 12 वर्ष बाहर जाकर वो भोग करें, ये 12 वर्ष तपस्या करनी थी उन्हें। तो फिर यज्ञ करते हुए, पवित्र नदियों में स्नान करते हुए कई स्थानों में गए अर्जुन, और ऐसे ही घूमते घूमते वो हरिद्वार में आए। हरिद्वार में गंगा के तट पर उन्होंने यज्ञ आदि किया, वहां पर रहे कुछ समय। फिर एक दिन जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो वहां पर नाग कन्या जिसका नाम था उलूपी, उसने अर्जुन को देखा और बड़ी आकर्षित हो गई अर्जुन के प्रति। और जैसे ही अर्जुन गंगा में स्नान कर रहे थे तो उलूपी ने उनको नीचे खींच लिया जल में और अपने लोक में ले गई, नाग लोक नीचे जो जल के नीचे था। आपको स्मरण होगा कि जब हम लोगों ने भीम के विषय में चर्चा की थी बचपन में, भीम को जब विष पिलाया गया था तो भीम भी नीचे चले गए थे और नीचे नागलोकों में जल के नीचे वहां पर वो गए थे। तो उलूपी उनको खींचकर वहां ले गई। अर्जुन ने जाकर देखा कि वहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था थी यज्ञ तैयारी करने की, हवन की। तो अर्जुन ने यज्ञ किया और उसके बाद उलूपी से पूछा कि आप कौन है और क्यों मुझे इस तरह से। तो उलूपी ने बताया बतलाया कि मैं आपके प्रति बड़ी आकर्षित हुई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि मैं तो वैसे भी यदि 12 वर्ष तक बाहर रहने वाला हूँ तो अभी नहीं, फिर कभी बाद में कर सकते हैं। लेकिन उरुपि ने कहा नहीं, एक क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई स्त्री उसके पास विवाह की इच्छा से आती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो फिर अर्जुन ने स्वीकार किया और उरुपि से विवाह किया, कुछ समय रहे। फिर जब वापस बाहर आए जल के बाहर तो उरुपि ने उनको एक वरदान दिया। उसने कहा कि आज के बाद जल का कोई भी प्राणी आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, अर्थात आप जल में जब भी रहेंगे, जल में बहुत सारे जलचर होते हैं, यहाँ भी कुछ प्राणी हैं, हमें लगा कि जलचर सुन के कहीं कालिया तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी चर्चा हो रही होने से शायद मैंने सोचा हो। तो जल में बहुत सारे प्राणी होते हैं और हो सकता है कि वो बाधाएं पहुंचाएं और कई बार पहुंचाते हैं मनुष्यों को, लेकिन अर्जुन को उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी जल का प्राणी आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद फिर वहां से अर्जुन चले गए, फिर कई स्थानों में गए, वो कई स्थानों में घूमते घूमते ऐसे कई स्थानों में गए जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, अर्जुन उनके साथ रहे और ऐसे भ्रमण करते रहे। करते करते मणिपुर आए। मणिपुर में वहां के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, जानते हैं आप लोग नाम, अर्जुन की पत्नी बनी चित्रांगदा। तो वो मणिपुर के राजा की पुत्री थी। अर्जुन बड़े आकर्षित हुए, अर्जुन ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज हम चाहते हैं कि सुभद्रा हरण की कथा को पूरा कर सके। बड़ी सुंदर कथा है सुभद्रा हरण की। अभी अर्जुन शादियां भी इतनी कर रहे हैं कि छोड़ भी नहीं सकते किसी एक को। तो अर्जुन वहां पर उनको चित्रांगदा के प्रति आकर्षित हुए और उनके जो पिता थे उन्होंने कहा कि दरअसल कई वंश पहले हम लोगों को एक आशीर्वाद मिला था शिव जी से और उस आशीर्वाद के अनुसार हमारे परिवार में केवल एक ही संतान होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन एक ही होते हैं। तो अगर पुत्र है तो ठीक है, वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरी तो केवल एक ही पुत्री है, अगर विवाह हो गया तो वो चली जाएगी तो मेरा वंश आगे नहीं होगा क्योंकि आगे संतान नहीं होगी, ऐसा हम लोगों को हमारी परंपरा है। तो इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मेरी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा उसका जो पुत्र होगा उसको मैं गोद ले लूंगा, अर्थात वो मेरा पुत्र होगा। ये परंपरा, ये प्रथा पहले बहुत प्रचलित थी। उसने कहा कि उसको मैं गोद ले लूंगा, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो। तो अर्जुन ने स्वीकार किया और फिर अर्जुन और चित्रांगदा का वहां पर विवाह हुआ। उसके बाद कुछ समय अर्जुन वहां पर रहे और फिर वो वहां से चले गए। जब उनके पुत्र हुए, बब्रुवाहन का नाम था, तो वे वहां से चले। घूमते घूमते एक ऐसे स्थान में आए जहां पर 5 पवित्र कुंड थे, लेकिन अर्जुन ने देखा कि इन कुंडों में अलग अलग तीर्थ के नाम से अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ इत्यादि इनको कहते थे। तो अर्जुन ने देखा कि इन कुंडों में कोई ऋषि मुनि स्नान नहीं करते हैं, हालांकि बड़े अच्छे कुंड हैं। तो अर्जुन ने कारण पूछा कि आप लोग क्यों नहीं स्नान करते हैं इसमें। तो उन्होंने बताया कि बड़े पवित्र कुंड हैं, अच्छे कुंड हैं, लेकिन पहले हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ हैं 5 कुंडों में अलग अलग, और अगर हम लोग जाते हैं स्नान करने तो खा जाते हैं हमें, इसलिए हमने स्नान करना बंद कर दिया। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, अभी अभी थोड़े समय पहले वरदान मिला था अर्जुन को, अर्जुन से शायद चेक करूं ठीक है कि नहीं है, जाके देखता हूँ। वैसे अर्जुन को पता था कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो अगर युद्ध होगा अभी तो लड़ेंगे। तो अर्जुन सौभद्र तीर्थ उसमें स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो स्नान करने लगते हैं तो नीचे से मगरमच्छ उनको पकड़ लेते हैं और अर्जुन अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ को और जैसे ही बाहर लाते हैं सब लोग ऋषि मुनि देख रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये भी गया, यंग ऋषि है, नया नया है, अभी इसको पता नहीं है, तो गया शायद लोग तैयारी कर रहे थे जे रानी लोग प्रेम मधन तो, लेकिन वो खींच कर बाहर ले आए और अचानक उन्होंने देखा कि फिर उसमें से एक अप्सरा प्रकट हुई। दरअसल ये जो पांच मगरमच्छ थे ये शापित अप्सराएं थी। तो एक अप्सरा प्रकट हुई, अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए, सारे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। तो अर्जुन ने पूछा कौन है भैया, तो फिर उसने बताया कि वो कुबेर की अप्सराओं में से एक अप्सरा है। वो बताने लगी कि हम लोग पांच अप्सराएं हैं, एक समय हम एक स्थान से जा रहे थे तो हमने देखा कि एक ऋषि वहां पर बैठे तपस्या कर रहे हैं और बड़ा ही युवक था वो, कोई वृद्ध ऋषि नहीं थे। तो उसके सौंदर्य को देखकर हम लोग प्रभावित हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आनंद लेना चाहिए, तो हम लोग उनको तंग करने लगे, कष्ट देने लगे। तो वे विचलित तो नहीं हुए, उनके हृदय में तो काम वासना जागृत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया हमें कि जाओ तुम लोग मगरमच्छ बन जाओ, अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व है आपको, तो फिर ऐसा सौंदर्य देता हूं कि कोई देखेगा नहीं आपकी तरह, तो मगरमच्छ बना दिया। तो इसीलिए पांच अप्सराएं, फिर उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने क्षमा याचना की उस ऋषि से, उस मुनि से, कि आप कृपा करके हमें ऐसा श्राप मत दीजिए। उसने कहा ठीक है, उसने पहले कहा था कि कई वर्षों तक, हजार वर्षों तक, फिर उसने कहा ठीक है मैं उसको कम कर देता हूं, एक कोई भगवान का भक्त आएगा और जब वो आपको आपके इस कुंड से बाहर खींच कर लाएगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर वे लोग जब इस श्राप को सुनकर जा रही थी तो नारद मुनि ने मिले, नारद मुनि ने देखा कि सबके मुंह लटके हुए हैं, बड़े दुखी हैं, पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी श्राप मिला है। तो नारद मुनि का चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी अर्जुन आने वाले हैं। नारद मुनि को तो सब पता रहता है ना, और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके टेलीविजन के चैनल सब कहना पड़े, नारद चैनल सबसे पावरफुल चैनल है इस यूनिवर्स में, कुछ भी छुपा नहीं रहता, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होने वाला है उनके चैनल में आ जाता है पहले से। तो नारद मुनि ने समझाया कि चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी अर्जुन आने वाले हैं और वो तुम सबका उद्धार करेंगे। तो फिर उसने याचना की कि अब बाकी चार भी हैं उनका भी उद्धार कीजिए। तो फिर अर्जुन ने एक एक करके सबको बाहर खींचा, सारे मगरमच्छों को, और वो सब फिर अप्सरा में हो गए और फिर वे अपने अपने स्थान वापस चली गई। ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बहुत से आशीर्वाद दिए अर्जुन को कि आज से हम लोग यहाँ आराम से स्नान कर सकेंगे। और फिर उसके बाद अर्जुन अपनी यात्रा को प्रारंभ रखना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पुत्र की याद आई, तो फिर से मणिपुर वापस आए, देखा कि काफी समय हुआ था और उस पुत्र को राजा राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और फिर वहां से आगे उन्होंने राजा से कहा कि अभी तो 12 वर्ष तक मैं इंद्रप्रस्थ जा नहीं सकता, तो इसलिए आप अपनी पुत्री को यहीं पर रखिए और जब हम वापस जाकर वहां पर यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ, तब आप अपनी पुत्री को लेकर आइएगा। तो फिर अर्जुन वहां से और आगे चले और प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, और जब कृष्ण ने यह सुना कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र में आए हैं तो वो वहां पर आए। यहां से जो कथा है ये बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन दो कथाएं यहां पर से हैं, एक जो साधारण महाभारत में आती है जो कथा, जिसको हम लोग आज कहेंगे, और एक कथा है जो श्रीपाद माधवाचार्य ने इसको दूसरे रूप में बतलाई, सुभद्रा हरण की कथा है, लेकिन श्रीपाद माधवाचार्य दूसरे तरीके से इसी कथा को समझाते हैं। तो दोनों कथाओं को सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब अर्जुन आए प्रभास क्षेत्र में, कृष्ण को पता चला, वो बहुत जल्दी वहां पर भाग कर आए, मित्र आया है, उनका मिलन हुआ। और फिर वहां पर रैवतक पर्वत बातचीत करते घूमते और फिर द्वारका में गए। द्वारका में भी बहुत स्वागत हुआ अर्जुन का, सब लोगों ने बहुत ही आनंद से इन दोनों को देखा, नर और नारायण, और ये काफी समय तक वहां रहे। और फिर एक समय ऐसा आया जबकि द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और सारे लोग रैवतक पर्वत पर उसकी प्रदक्षिणा करने, पूजा करने इत्यादि जाने लगे और उनमें सुभद्रा भी गई। तो उस समय अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और ऐसा लिखते हैं, सब वर्णन किया है कि जब सुभद्रा बैठी हुई थी सबके बीच में अपनी सहेलियों से घिरी हुई और अर्जुन की जब दृष्टि उन पर पड़ी तो अर्जुन उनको देखते ही रह गए। बहुत सुंदर थी सुभद्रा और कृष्ण ने ये देखा और कृष्ण जान गए। जान गए मतलब वो तो पहले से ही जानते थे, पहले में है अर्जुन के सोचने के पहले जानते थे कि अर्जुन क्या सोचने वाले हैं। तो खैर कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सुभद्रा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो क्षत्रियों में विवाह करने की कई विधियां हैं, अगर तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो, मेरी भी इच्छा है, लेकिन कई विधियां हैं। एक है स्वयंवर। अब स्वयंवर में ऐसा होता है कि जो वधु होती है वो खुद वर को चुनती है, तो ऐसा हो सकता है कि सुभद्रा आपको चुने नहीं क्योंकि आप उसके ओर आकर्षित हुए, सुभद्रा तो नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी पद्धति होती है हरण करना, राक्षस विधि, क्योंकि कृष्ण ने भी वही किया था, रुक्मिणी का हरण, कृष्ण ने भी दूसरी ये विधि होती है। तो क्षत्रियों के लिए दोनों उचित है, दोनों विधियां ठीक है। तो इसलिए मेरा प्रस्ताव ये है कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, क्योंकि अपनी बहन का हरण करवा रहे, पूरी योजना बना रहे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, फिर आपकी मंत्रणा है। तो फिर तुरंत एक दूत भेजा युधिष्ठिर महाराज के पास। क्या संदेश था? महाराज मैं सुभद्रा का हरण करना चाहता हूं, आपकी अनुमति है या नहीं है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरी पूरी अनुमति है, आप सुभद्रा का हरण कीजिए। और क्यों अनुमति है? क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा है। फिर वसुदेव के पास ये भेजा गया संदेश, देखिए उनकी पुत्री का हरण करने वाले हैं, और उनको संदेश भेजा आपकी पुत्री का हरण करने वाला हूं, सब ठीक है, कोई चिंता तो नहीं? वसुदेव ने कहा नो प्रॉब्लम, तो बढ़िया है करो, अर्जुन जैसा वर कहां मिलेगा? बलराम जी को नहीं बताया था केवल, क्योंकि बलराम जी बड़े क्रोध में रहते हैं। तो फिर अब हरण करना है तो अर्जुन तो ऐसे ही घूम रहे थे, तो रथ तो चाहिए, अच्छे घोड़े वाला रथ चाहिए, हथियार चाहिए। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण चिंता नहीं, तो मेरा रथ है ना, किस लिए मेरा रथ ले जाओ, मेरा रथ मेरे घोड़े मेरे हथियार से ही मेरी बहन का अपहरण कर। तो फिर ठीक है आपकी इच्छा, जो हरी इच्छा। तो फिर अर्जुन ने उस दिन जब उत्सव हुआ तो सुभद्रा भी आई और सुभद्रा पर प्रदक्षिणा कर रही थी उस पर्वत की, और उसके बाद जब द्वारका जाने लगी तो अचानक उन्होंने सुभद्रा का अपहरण कर लिया और लेकर अपने रथ पर बिठाया और भाग। तो जैसे ही वहां के सैनिकों ने देखा, जब उनको पता चला तो एकदम हंगामा हो गया और सारे लोग एक साथ आए। और उन्होंने उस समय ऐसा होता था कि जैसे हमारे लोग देखते हैं ना देश में सायरन बजते हैं जब कुछ इमरजेंसी होती है, आप में से अगर किसी को ध्यान हो, मैं पता नहीं कि जब युद्ध होते थे भारत पाकिस्तान भारत चाइना, तो अचानक सायरन बजता था रात के समय, ब्लैक आउट, सब बंद, घर की लाइटें बंद कर दो, कुछ बम गिर जाएगा इत्यादि इत्यादि, तो सायरन होता था इमरजेंसी। तो ऐसे उस समय पर बिगुल बजाते थे, तो उन्होंने वो बिगुल बजाया सेनापति ने, तो जो भी जहां थे सब अपने अपने काम छोड़कर आ गए, युद्ध होने वाला है। अचानक उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, कृष्ण के राज्य में अभी तक सब ठीक था, अचानक कौन सा युद्ध, सब आ गए। तो फिर सभा सुधर्मा सभा वहां पर सब बैठे और सारे लोग बोलने लगे कि नहीं ये बड़ा बहुत बड़ा अपमान है, हम सबके होते हुए अर्जुन कैसे ले गया सुभद्रा को, ये तो हमारी नाक काट दी, अभी चलना चाहिए, तो करो, कृष्ण क्या कहते हैं पहले वो सुनो। और फिर वो कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि देखो अर्जुन को हमने कितना सम्मान दिया, इतना आदर सम्मान दिया उसको, लेकिन वो कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया उसने। बड़े गुस्से में थे बलराम जी और कहने लगे कि हमें अभी युद्ध करना चाहिए और मैं अकेला ही सारे कौरवों के लिए काफी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या मत है? तो कृष्ण ने कहा कि आप सब कह रहे हैं कि अर्जुन ने हमारे वंश का या हमारा अपमान किया है, दरअसल अपमान नहीं किया, हमारा मान बढ़ाया है। सब लोग बोलने लगे, उठाकर ले गया था आपके बीच में से और कृष्ण कह रहे कि हमारा मान बढ़ाया है। तो मैंने कहा हाँ, कि देखिए अर्जुन ये कोई साधारण वंश से तो नहीं है, गुरु वंश का है, इतने बड़े वंश का होते हुए उसने हमारे वंश की स्त्री से विवाह करने का सोचा, तो क्या हमारे वंश का मान नहीं बढ़ा? सब लोगों ने कहा ये बात तो है। देखिए कृष्ण भी सब लोगों को घुमाने में सबसे एक्सपर्ट है, जब वो घुमाना चाहते हैं तो फिर बैठे हैं ना अंदर सबके हृदय में, ईश्वर सर्व भूतेषु, सारे हृदय में, सबके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में। और क्या करते हैं, कौन से यंत्र से घुमाते हैं? भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान घुमाते नहीं कि यंत्र से, ये यंत्र है उसको घुमाते हैं। कौन सा श्लोक है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामयन सर्व भूतानि, सारे भूतों को कैसे घुमाते हैं? यंत्र रूढ़ानी माया। तो अभी अपनी माया शक्ति पर आकर्षित कर रहे हैं, अभी तक सब बड़े बहुत जोर जोर से हमारा अपमान हो गया, अपमान नहीं हुआ, मान हुआ है। अरे अर्जुन जैसे व्यक्ति ने हमसे संबंध करने की सोची, कितना बड़ा अपमान है हम सबको, ये कोई अपमान है? मैंने कहा नहीं, सही बात है, बहुत बड़ा मान दिया अर्जुन। और फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन जैसा वीर हमें कहां मिलेगा? देखिए अर्जुन की शक्ति, शिव जी के अलावा कोई उसको परास्त नहीं कर सकता, केवल शिव है जो उसको परास्त कर सकते हैं, तो ऐसा हमें कहां मिलेगा दामाद? कितने गर्व की बात है हम सबके लिए कि अर्जुन ने ऐसा किया, और आप कह रहे हैं कि उसने गलत किया, तो क्षत्रियो के लिए कोई गलत नहीं है, ये तो रीति है विवाह करने की। और वो कहने लगे कि अगर घर की स्त्रियों को ऐसे ही दे दिया जाए जिसको कन्या दान कहते हैं, तो वो तो ऐसे होगा कि जैसे कोई पशु को दे रहे हैं, हाँ दान दे दिया। अरे करना है तो ऐसे करना चाहिए विवाह, ये सही पद्धति है। सबने कहा हाँ, क्षत्रियो के लिए ये सही पद्धति। और फिर उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन इतना शक्तिशाली है, अगर हम सब उससे युद्ध करने गए और अकेले अगर उसने हम सबको हरा दिया, तो सोचो कितना बड़ा अपमान होगा हमारे वंश का, आगे आने वाली पीढ़ियां भी यही कहेंगी कि अर्जुन ने अकेले हरा दिया था हम सबको, तो क्या हमें जाना चाहिए? सबने कहा नहीं नहीं नहीं, युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अच्छा है कि अभी अर्जुन मेरे रथ है उसके पास, एक बात ये भी कही थी उन्होंने, कहते थे कि मेरा रथ और मेरे घोड़े हैं उसके पास, अर्थात भगवान कह रहे थे कि मेरा रथ होते हुए वो हार तो सकता नहीं है। तो इसलिए फिर सब ने कहा कि ठीक है, उनको वापस लाना चाहिए और विवाह कराना चाहिए। और फिर विवाह करा के फिर अच्छी तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए। ये एक कथा जो साधारणतः हम लोग सुनते हैं, श्रीपद मध्वाचार्य इसको बड़ा रोचक बनाते हैं इसी कथा को, और वो समझाते हैं कि कैसे विवाह हुआ था, सुभद्रा हरण कैसे हुआ था। वो कहते हैं कि जब प्रभास क्षेत्र में अर्जुन आए, तो क्योंकि काफी कई वर्षों से घूम रहे थे, तो एक सन्यासी के वेश में थे, उनको पहचानना नहीं कठिन था, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, जटाएं थी उनकी, क्योंकि जंगलों में घूम रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में ऋषि मुनियों के साथ, तो वैसे ही लग रहे थे। तो फिर जब वो प्रभास क्षेत्र में आए, तो कृष्ण के अलावा और कोई उनको पहचान नहीं पाए, कृष्ण उनको पहचान गए, कृष्ण उनसे मिले। और फिर जब कुछ समय वहां रहे और कृष्ण ने देखा, कृष्ण की बड़ी इच्छा थी हृदय से कि अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो, और बलराम जी की बड़ी इच्छा थी हृदय से कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, उससे अच्छा लड़का और कहां मिल सकता है, गुरु वंश का है, राजा बनेगा इत्यादि, और वैसे भी बलराम जी दुर्योधन को प्रेम करते थे, दुर्योधन प्रिय था उनको। तो फिर बलराम जी की हृदय से इच्छा थी कि दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह हो जाना चाहिए, और कृष्ण इसको जानते थे और कृष्ण चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। वैसे लोग विभाजित थे, वसुदेव जी भी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन बलराम जी के सामने कोई बोल नहीं पाता था, बड़े भाई थे ना। इस बार तो हम लोगों ने कई बार सुना है कि जब लक्ष्मण के रूप में आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि आगे से कभी छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, इसलिए बड़े बनकर आए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु के रूप में भी पहले आए, बड़े आए, बाद में नहीं, छोटे भाई नहीं बने, उन्होंने वचन ले लिया। अभी इसे छोटा नहीं, बहुत सुनना पड़ता है, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो फिर बलराम जी से सब डरते थे, कोई बलराम जी के विरुद्ध बोलने वाला नहीं, और बलराम जी ने कहा था कि विवाह तो दुर्योधन से होगा, वो सोच रहे थे मन ही मन। तो वैसी स्थिति में जब अर्जुन आए और वसुदेव जी की इच्छा सबकी इच्छा थी, और कृष्ण ने भी देखा कि अर्जुन सुभद्रा के प्रति बड़े आकर्षित हुए हैं, तो उन्होंने बलराम जी से कहा, बलराम जी ने देखा कि कौन सन्यासी आया है, तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी हैं, यहाँ चतुर्मास के लिए रुकेंगे, चार मास बाद तपस्या करने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इनको कहाँ व्यवस्था इनकी करनी चाहिए ताकि इनकी देखभाल अच्छी हो। तो बलराम जी ने कहा ये सन्यासी हैं, इनकी देखभाल है, सुभद्रा के महल में भेज दो इनको, सुभद्रा के महल में रहेंगे, वहां पर अन्य दासियां हैं, और सुभद्रा से कहो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, चतुर्मास वहां करेंगे। तो कृष्ण ने कहा सुभद्रा के महल में देख नहीं रहे हो, कितना युवक है ये, सन्यासी है ठीक है, लेकिन युवक है, और ऐसी अवस्था में एक स्त्री के पास भेजना, एक कन्या के ग्रहों में रखना क्या ठीक है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बलराम जी से उन्होंने कहा, देखिए चाहते थे कृष्ण, बलराम ने कहा कि देखो हमें ये सब नहीं, एक सन्यासी है, ऐसी गलत बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए, और इसको वहीं रहे, ताकि वहां पर रहेगा स्त्रियां थोड़े अच्छे से उनकी देखभाल करेंगी, अब हमारे साथ में रहेगा तो हम लोग कभी चले जाते हैं आखेट खेलने के लिए, कभी यहाँ चले जाते हैं, उसका ध्यान नहीं हो पाएगा। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मैं कैसे इस युवक को, इस सन्यासी को, भले सन्यासी है लेकिन है तो युवक, और देखो कितने शक्तिशाली भी है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे मैं कन्याओं के पास भेज सकता हूँ। बलराम जी कहे कोई बात नहीं है, तो भेज दो उसको, ठीक है आपकी आज्ञा है, भेज देता, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, अब आपकी आज्ञा को मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए भेज देता हूँ, लेकिन आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तो ठीक है फिर उन्होंने भेज दिया। तो फिर सुभद्रा जी के महल में एक स्थान दिया गया बाहर उनको सन्यासी को रहने के लिए, और कृष्ण ने कहा सुभद्रा से, देखो बलराम भैया का आदेश है कि इनकी बड़ी अच्छे से देखभाल करना। सुभद्रा ने कहा ठीक है, आपका आदेश, बलराम जी का आदेश पालन करेंगे। तो फिर सुभद्रा उस सन्यासी की सेवा करने लगी, सन्यासी वहां रहे, रोज हरी कथा होती, कृष्ण के विषय में चर्चा करते अर्जुन, और ऐसे दिन बीतने लगे। एक समय ऐसा हुआ कि जब सारे लोग, कृष्ण बलराम इत्यादि, ये लोग कहीं बाहर चले गए आखेट इत्यादि के लिए बहुत दूर, और ऐसे समय में सुभद्रा, क्योंकि वो सन्यासी की सेवा में थी, सन्यासी तो चतुर्मास, वो तो हिलेंगे नहीं, वो वहीं पर थे, तो फिर उस समय सुभद्रा ने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत स्थानों में घूमते हैं, क्या आप पांडवों के विषय में कुछ जानते हैं। वैसे वो जानना चाहती थी अर्जुन के विषय में, लेकिन हम सीधे कैसे पूछ सकती है कि भाई आपने देखा है कि अर्जुन कैसा लगता है, वो तो है क्या साथ में कुछ। तो उन्होंने पूछा कि आप तो भ्रमण करते हैं तो आपको पता होगा, पांडवों के विषय में कुछ जानते हैं। तो हाँ, पांडवों के विषय में मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है, तो मैं जानता हूँ पांडवों के विषय में, उन्होंने बहुत कुछ बताया पांडवों के विषय में। सुभद्रा बड़ी आश्चर्यचकित है, ये तो बहुत जानते हैं पांडवों के विषय में, ऐसी ऐसी बातें जानते हैं जो बाहर कोई नहीं जानते। हाँ सही बात है, तो बहुत कुछ बताया पांडवों के विषय में, उन्होंने पांडव ऐसे हैं, ऐसे रहे, उनका प्रेम ऐसा है, उनका विवाह हुआ, बहुत कुछ बताया। सुभद्रा बेचारी सुन रही थी, उसके मन में आ रहा था कि कैसे पूछूं। तो फिर उन्होंने पूछना, अच्छा युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं? बहुत अच्छे युधिष्ठिर महाराज, ऐसे धर्म का पालन करते हैं, भीम भी बहुत अच्छे हैं। और अर्जुन ने फिर कुछ और नहीं बोला, उसने पूछा अर्जुन कैसे हैं? हाँ मैं बताता हूँ। तो अर्जुन का वर्णन करने लगे, अर्जुन की शक्ति है इत्यादि इत्यादि। तो आपने देखा है अर्जुन को? हाँ देखा है, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ अर्जुन को। सुबोधन ने कहा मुझे दिखा सकते हैं अर्जुन? हाँ अभी दिखा सकता हूँ, कोई थे ही नहीं कृष्ण बलराम, सारे लोग से बाहर थे, अभी दिखा सकता हूँ। सुबोधन ने कहा कृपया करके दिखाई, मैं अर्जुन को देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, कौन है ना, कैसे दिखते हैं अर्जुन। ठीक है कोई बात नहीं, खड़े हुए सामने खड़े तुम्हारे। सुभद्रा को आश्चर्य, क्या बोल रहे? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने सारी कथा बताई कि कृष्ण जानते हैं मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ। सुभद्रा बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। तो फिर उस समय अर्जुन ने प्रस्ताव रखा विवाह का, और सुभद्रा से कहा कि ठीक है चलो अभी हम लोग विवाह कर लेते हैं। सुभद्रा ने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ, कृष्ण होने चाहिए, कम से कम वसुदेव देवकी होने चाहिए, उनकी उपस्थिति में अगर विवाह हो तो अच्छा है, ऐसे हम लोग विवाह करें ये ठीक नहीं है। तो फिर अर्जुन ने कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण बहुत दूर थे लेकिन तुरंत वहां पर आ गए, साथ में वसुदेव जी को भी लाए, देवकी को लाए, और फिर ये चाहती थी सुभद्रा कि युधिष्ठिर महाराज भी आए, लेकिन वो तो संभव नहीं था, उनको तो बुला नहीं सकते थे। ये अब ऐसे समय में हो रहा था जब बाकी सब बाहर थे, किसी को कुछ पता नहीं था, केवल कृष्ण आए थे वहां पर और वसुदेव जी आए थे। तो फिर उस समय अर्जुन ने इंद्र का स्मरण किया, दोनों तरफ से होना चाहिए ना माता पिता, तो इंद्र भी आए, शची देवी भी आई, तो इधर से भी आ गए इधर से भी आ गए, और फिर वहां पर विवाह हुआ, सुंदर तरीके से विवाह कराया गया, और कृष्ण सुबह होने से पहले वापस पहुंच गए जहां पर थे ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। और जाते जाते कृष्ण ने अपना रथ दे दिया कि ये मेरा रथ है, ये अस्त्र है, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तुम इसको रख लो। और जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो बलराम जी बड़े क्रोधित होंगे, इसलिए सुबह होने से पहले, हमारे आने से पहले चले जाना यहाँ से। तो फिर अर्जुन ने कहा ठीक है। तो विवाह तो हो गया था, अगले दिन उन्होंने रथ में बिठाया चले गए बाहर। तो जब चले गए और सब लोगों को पता चला यहाँ पे, अरे वो सन्यासी तो सुभद्रा को ही लेकर हरण करके चला गया, भागे वो लोग बलराम जी को संदेश देने के लिए भागे। दरअसल वहां पर बलराम जी का एक बहुत ही विशेष उनका पार्षद था जिसको द्वारका की रक्षा के लिए उन्होंने रखा था, और वो बड़ा शक्तिशाली था, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो कृष्ण ये जानते थे कि जब तक वो है अर्जुन बाहर नहीं जा पाएगा, बहुत भयानक युद्ध होगा। तो जाते जाते उसको बोल गए थे कृष्ण कुछ करना नहीं। तो जब अर्जुन जाने लगे तो वो भी कुछ, उसने भी ऐसे दिखाया कि जैसे वो हार गया, और फिर भागा बलराम जी के पास कि अरे बलराम जी बड़ा अनर्थ हो गया। बलराम जी ने कहा क्या हुआ? अरे वो सन्यासी था ना। कौन सन्यासी? वो चतुर्मास कर रहा था। हाँ क्या हुआ? सुभद्रा को लेकर भाग गया। बलराम जी ने कहा क्या? चलो सब वापस, तुरंत सब आए, सारी सभा बुलाई गई और सब लोग बहुत बोल रहे थे कि देखो कैसा किया हमने उसको, इतना मान सम्मान दिया, कौन था वो? तो इसने बताया कि मुझे लगता है वो अर्जुन था। तो तुम्हें जैसे बता अर्जुन था, नहीं जब वो जा रहा था तो मैंने देखा उसने कवच वगैरह पहना था और वो कोई साधारण ऐसा सन्यासी नहीं था, वो अर्जुन था। तो अर्जुन था तो अभी युद्ध करना चाहिए, सब लोग अभी उसने अपमान कर दिया हमारा, तो अभी युद्ध होना चाहिए। तो मधुचार्य जी वर्णन करते हैं कि जब सभा में सब चल रहा था कृष्ण सर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। कृष्ण सर जी कहते ठीक है बोलने तो बोलने तो बोलने, बाद में बोलूंगा। सब लोग अपना अपना बोल रहे थे अभी करना चाहिए, मारना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं कौरवों को। बलराम जी कह रहे थे अभी युद्ध करता हूँ, दिखाता हूँ उनको अपनी शक्ति। और फिर कृष्ण से बोला तुम क्यों ऐसे सर पर हाथ रखे बैठे हो? कृष्ण बड़े शांति में बोले मैं आप सबको सुन रहा हूँ, तो बोलो तुम क्या करना चाहिए। देखो वो सन्यासी, उसको हमने इतना मान दिया और वो भाग गया लेकर, हरण कर लिया। तो फिर कृष्ण ने समझाया कि नहीं ये ठीक है क्षत्रिय के लिए, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, ये रीति है, क्षत्रिय ऐसे विवाह करते हैं, और उसने बल से हरण किया है तो फिर ये उसका अधिकार बनता है। अभी हमें केवल इतना करना चाहिए कि उसको लाकर यहाँ पर अच्छी तरह से विवाह कर लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वीकारेंगे नहीं तो बैर बढ़ेगा। और अर्जुन की शक्ति का भी वर्णन उन्होंने किया, तो फिर सबने स्वीकार किया और फिर उसका विवाह किया गया लाकर। फिर करीब एक वर्ष तक वो वहां पर रहे सुभद्रा के साथ, फिर पुष्कर क्षेत्र इत्यादि में भ्रमण के लिए भी गए। और फिर एक वर्ष के बाद सुभद्रा को लेकर फिर वो वापस इंद्रप्रस्थ आए अपनी राजधानी में। तो इस प्रकार से सुभद्रा को विवाह करके वो वापस आए। आकर उन्होंने सबको प्रणाम किया, द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी ने उल्हाना देने लगी कि हाँ अब तो सुभद्रा के पास रहोगे, सुभद्रा से ज्यादा प्रेम है इत्यादि। तो उस समय अर्जुन ने, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा वातावरण भी हो रहा था, थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा था, द्रौपदी को ऐसे लग रहा था कि सुभद्रा ज्यादा सुंदर है, अब अर्जुन उसके प्रति आकर्षित होंगे, मेरे प्रति ध्यान नहीं करेंगे। तो फिर उस समय अर्जुन ने सुभद्रा से कहा कि आप ये जो राजसी ठाट-बाट है इसको, इससे ऐसे सबके सामने मत जाइए। तो सुभद्रा ने अपने सारे राजसी वस्त्रों को निकालकर साधारण ग्वालन का वस्त्र धारण किए, क्योंकि है तो ग्वालन, कृष्ण भी ग्वाले हैं, सुभद्रा ग्वालन। तो मैंने वैसे एकदम साधारण वस्त्र धारण किए, कुंती देवी के पास गई, सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया, कुंती देवी ने उनको स्वीकार किया और फिर बड़ी नम्रता से द्रौपदी के पास गई। द्रौपदी थोड़े से क्रोध में थी, तनाव बना हुआ था और सब लोग सोच रहे थे क्या होगा। तो फिर ऐसे समय में बड़ी नम्रता से वो द्रौपदी के पास गई, उन्हें प्रणाम किया उनके चरणों में। बच्चों को थोड़ा अंदर भेज, कृष्ण भगवान अपने सबके लिए स्थान है। ये अभी भी हुए हैं कुछ समय पहले, इसलिए उनको यहाँ पर शायद रखा गया, थोड़े समय बाद अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा द्रौपदी से कि मैं आपकी दासी हूं, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। देखिए सुभद्रा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई निचले घराने की, बहुत बड़े घराने की राजकुमारी, लेकिन उन्होंने नम्रता दर्शाई। और यहां पर हम लोग इस सिद्धांत को देखते हैं कि केवल नम्रता से सारी समस्याएं सुलझ गई। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि सुभद्रा जो इतने बड़े वंश की है और बड़ी नम्रता से पांव पड़कर कह रही है कि मैं आपकी दासी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए, उसका हृदय पिघल गया। फिर उसने तुरंत उसे गले से लगाया और सारी जो तनाव बना था वो सब दूर हो गया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये सिद्धांत है कि अगर हम नम्रता से व्यवहार करते हैं, हृदय में नम्रता लाते हैं, तो फिर हम सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि नम्रता ये एक पहली सीढ़ी है, भगवत गीता में शायद लिखते हैं इसको, मैं ठीक से ध्यान दें, भगवदगीता के पहले अध्याय में जहां पर अमान उसमें चर्चा में करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो नम्रता है ये पहली सीढ़ी है भगवान तक जाने की। और वो बताते हैं कि अलग अलग फ्लोर है, अलग अलग सीढ़ियां हैं जो अलग अलग स्तरों तक जाती हैं, और जिसमें सबसे ऊंचा स्तर है कृष्ण, कृष्ण की प्राप्ति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस तक नहीं पहुंचा है, उससे एक दो कदम नीचे भी है, तो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन इस ज्ञान की शुरुआत नम्रता से होती है। अगर व्यक्ति नम्र नहीं है तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा तो फिर वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं सीढ़ियां हैं जिसकी शुरुआत होती है नम्रता से, अमानित्वम। भगवान ने जब ज्ञान के लक्षण बतलाए, हमने सबसे पहला यही बतलाया अमानित्वम, अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा शांतिराजवम। अमानित्वम मान की आशा नहीं करना, इस भौतिक जगत का लक्षण है, इस भौतिक अस्तित्व में रहते हुए हम हमेशा मान सम्मान की कामना करते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। कोई अपने धन के बल पर, कोई ज्ञान के बल पर, कोई सौंदर्य के बल पर, और किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे मान सम्मान मिले, वो आशा करता है। तो ये भौतिक जगत का, भौतिक अस्तित्व का लक्षण है। लेकिन वो व्यक्ति जो ज्ञान में है, ये ज्ञान पाना चाहता है, ज्ञान जान लेता है, वो नम्र हो जाता है। क्योंकि मान और अपमान ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को लेता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसके लिए मान अपमान योग, उसके लिए मान अपमान क्या है? तो इसीलिए ऐसे मान अपमान मात्र स्पर्श शास्त्र कौमदेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायु नित्यास्ताम स्थिति स्वभाव, सुख दुख मान अपमान ये सब केवल आने जाने वाले शरीर से संबंधित है। नम्रता तब आती है जब हम इस बात को जाने। नम्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा की इच्छा ना करना, दूसरों के लिए कार्य करना। चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाओं में से सबसे प्रमुख यही शिक्षा है, घृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो व्यक्ति कीर्तन कर सकता है सदैव सही दृष्टि में, अमान जिसको कोई मान की आशा नहीं। हम लोग अगर भक्ति करें तो भक्ति में भी मान की आशा आ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, संक्षेप में अगर चर्चा करें तो भक्ति में भी मान सम्मान की आशा होती है। कोई व्यक्ति प्रवचन देता है उसको आशा होती है कि लोग मेरा मान सम्मान करें, कोई गाता है उसको आशा होती है मान सम्मान करें, कोई कुछ नहीं भी करता है तो भी उसको आशा होती है। और ये आशाएं बढ़ती जाती हैं हमारी पदवियों के साथ। पहले कुछ नहीं है, भक्ति में थोड़े मान सम्मान की आशा होती है, व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है उसको मान सम्मान की आशा बढ़ जाती है। वो सोचता है मैं गृहस्थों से ऊंचा हो गया, अब सारे गृहस्थों को आकर मुझे दंडवत करना चाहिए। सैफरन धारण कर लेता है और मान सम्मान की आशा, सन्यासी हो जाता है दंडा हाथ में आ जाता है, गुरु बन जाता है और मान सम्मान की आशा। तो देखिए भक्ति में भी ये मान सम्मान की आशा छोड़ती नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा संसार त्याग दिया, अपनी सुविधाओं को त्याग दिया, बड़ा सादा सरल जीवन जीता है। लेकिन सादा सरल जीवन जीने में भी उसकी इच्छा ये होती है कि लोग कहें कितना तपस्वी है ये, तपस्या करता है, देखो कितना सादा जीवन, जमीन पर सोता है, सादे कपड़े पहनता है, तो वो भी मान सम्मान, सब कुछ त्याग दिया है इसने, कितना बड़ा त्यागी है, ये भी मान सम्मान। तो ये जो मान सम्मान की भावना, ये जो नम्रता है, ऐसा नहीं है कि भक्ति की शुरुआत में आवश्यकता है, हर स्तर पर इसकी आवश्यकता है। और व्यक्ति को हर स्तर पर नम्र रहना चाहिए। उदाहरण दिया जाता है उस वृक्ष का कि जब उसमें बहुत ज्यादा फल लग जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, फिर वो तनकर खड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब भक्त के अंदर भक्ति का उदय हो जाता है, ज्ञान भर जाता है, तो इस ज्ञान से भरे हृदय से, भक्ति भरे हृदय से वो तनकर नहीं रह सकता, वो झुक जाता है, नम्र हो जाता है। तो इसलिए नम्रता ये भक्ति का लक्षण है, नम्रता ये ज्ञान का लक्षण है। जितना व्यक्ति नम्र होता है, अपने मान सम्मान की आशा नहीं करता, केवल सेवा करता है। बहुत कठिन है ये, कहना सुनना बड़ा आसान है, नम्र होना चाहिए, लेकिन असली नम्रता बहुत कठिन होती है। जब अहंकार को चोट लगती है, जब कोई अपमान करता है, जब कोई आपसे आपके अधिकार को छीनता है, कष्ट होता है। लेकिन यही कष्ट हमें हमारी उस स्थिति, दास दासानुदास इस स्थिति को याद करवाता है, स्मरण कराता है। इसीलिए भक्त के लिए आवश्यक है कि वो ऐसी स्थिति में रहकर, नम्रता के भाव में रहकर भगवान की सेवा करे, जिससे भगवान को प्रसन्न कर सके, जैसे सुभद्रा ने द्रौपदी को प्रसन्न किया। नहीं तो द्रौपदी के लिए किसी और को अपना स्थान देना बहुत कष्टमय है, लेकिन केवल उसकी नम्रता को देखकर उसने उस स्थान को स्वीकार किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नम्रता के कारण बड़ी बड़ी आने वाली तकलीफों को दूर किया गया और भक्तों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको ये जानना चाहिए कि भक्त जहां भी नम्र स्थिति को अपनाता है वहां सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, लेकिन जहां नम्रता नहीं है, जहां हम अपनी स्थिति अपने आप को दूसरों पर लादना चाहते हैं, हम ही ये चाहते हैं कि मैं जो कहता हूं वही सही है, तो फिर वहां पर सहयोग नहीं होगा। सहयोग नम्र व्यक्तियों के बीच हो सकता है, अहंकारियों के बीच कैसा सहयोग? वहां तो फिर केवल टकराव होता है अहंकार का, एक का अहंकार दूसरे के अहंकार से टकराता है और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब एक की नम्रता दूसरे की नम्रता के सामने झुकती है तब समस्याओं का समाधान होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखिए, जहां अहंकार है वहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं, एक का अहंकार दूसरे के अहंकार से टकराता है और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नम्रता, एक की नम्रता दूसरे की नम्रता के आगे झुकती है, समस्याओं का समाधान होता है। तो इसीलिए ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम लोग नम्र स्थिति अपनाएं, विशेष करके भक्तों के लिए। बड़े बड़े आचार्य अपने भजनों के द्वारा, अपने लेखनों के द्वारा हमें यही सिखलाते कैसे हमें नम्र बनना है। श्री प्रभुपाद ने हमें सिखलाया, उनके अनुयायी हमें वही सिखला रहे हैं। एक ही चीज है, चैतन्य महाप्रभु ने वही सिखलाया, त्रिणादपि सुनिश्चेन तबोरपि सहिष्णुः। इस एक गुण को अगर हम लोग अपने अंदर, जो कि बहुत कठिन है, बड़ा कष्टमय है, कष्ट देता है, लेकिन इस गुण को अगर हम लोग अपने हृदय में लाएं तो ये बड़ी आसानी से भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, सभी जीवों को प्रसन्न कर सकते हैं, और इतना ही नहीं कृष्ण को भी प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।